सुनो कहानी दिनेश दीक्षित से। अबाबील और हैप्पी प्रिंस।
ऑस्कर वाइल्ड की ये कहानी आप लोगों ने जरूर पढ़ी सुनी होगी। आपकी तरह मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद है। लीजिए सुनिए इसका भावांतर। एक नीली झील के किनारे अबाबील की बस्ती थी, जो किनारे के घने पेड़ों पर बसी हुई थी। इस अबाबील की बस्ती में एक अभी अभी जवान हुआ पक्षी भी था, जो अपने परिजनों के साथ उस झील के सुरम्य वातावरण में दिन भर चहकता फिरता था। एक दिन उस जवान पक्षी ने देखा कि झील के बीचों बीच एक सुंदर सरकंडे का फूल खिला है, बड़ा खूबसूरत, और वो पक्षी को देखकर मुस्कुरा भी रहा है। इस जवान पक्षी को सुंदर सरकंडे के फूल से पहली नजर में प्यार हो गया। वो किनारे पर बैठा दिन भर एकटक उसे देखा करता। जब मन नहीं मानता तो दो तीन चक्कर उसके आसपास लगा आता। ठंड की शुरुआती बयार से वह फूल हिलता। हमारे पक्षी को लगता वह इशारे कर रहा है, वो तो मर मिटा। उसके रिश्तेदार दोस्त समझाते, अरे वो तो सरकंडे का फूल है यार, दो चार दिन में मुरझा जाएगा। पर जवान पक्षी का दिल है कि मानता नहीं। धीरे धीरे झील के किनारे ठंड बढ़ने लगी, पाला उतरने लगा। यही वो वक्त था जब परिंदे इस जगह को छोड़कर मीलों दूर सफर तय करके सुरक्षित गर्म स्थानों में पहुंच जाते थे। घर के बड़े बुजुर्ग पक्षियों ने उस जवान पक्षी से कहा, अब बस करो यार, हमारे साथ निकल चलो, ठंड अब तेजी से बढ़ने लगी है, एक दो रोज में तेज पाला गिरेगा। वह दीवाना सरकंडे के फूल का उससे प्यार जो कर बैठा था, दोस्तों ने समझाया, वो घास का फूल है रे, अभी पाले में मुरझा जाएगा और गिर जाएगा झील के पानी में। पर ये कहाँ मानने वाला, रोज सुबह शाम उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता, उसे चूमने की कोशिश करता। उस दिन सभी पक्षियों ने वो बसेरा सुबह सुबह छोड़ दिया और सुरक्षित स्थानों की तरफ पूरे कुनबे ने कूच कर दिया। दूसरे दिन शाम ठंड से सरकंडे का फूल भी मुरझा गया, सुबह झील के ठहरे ठंडे पानी में गिर गया। अबाबील का दिल तो बैठ गया, पर उसने उसके चक्कर लगाना नहीं छोड़ा। आज सुबह आखिरी अबाबील का जोड़ा अपने नन्हे बच्चों को साथ निकलते समय जवान उदास अबाबील से बोला, मौत को आमंत्रण मत दो दोस्त, आज की शाम किसी भी हालत में इस जगह को छोड़ देना, पाला अब कभी भी पड़ सकता है, फिर तुम बर्फ के तूफान से गिर जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। उदास अबाबील कुछ नहीं बोला, बस झील के ठहरे पानी में सरकंडे के मुरझाए फूल को देखता रहा। आंखों से झरझर आंसुओं की बौछार लग गई। सुबह ठंड बढ़ चली, ठंडी हवा की आमद बता रही थी कि जल्द ही बर्फबारी होने वाली है। मन महसूस कर उदास अबाबील अपने पंखों को फैलाकर अपने साथियों की दिशा में उड़ चला। जाते जाते उसने डबडबाई आंखों से झील के पानी में अपने प्रिय सरकंडे के फूल को आखिरी बार देखा। अब उसे अपने साथी परिजनों से मिलने की धुन सवार हो गई। सांझ ढलते वह एक नगर के ऊपर पहुंच गया था। नगर में दीपक टिमटिमाने लगे थे। उसने सोचा कोई सुरक्षित जगह दिख जाए तो रात यहीं काटी जाए। सुबह पहट उठकर फिर उड़ा, दूर तक उड़ा, दूर तक सुरक्षित जगह के लिए उड़ान। उसने देखा एक वीरान सा बगीचा शहर के बीचों बीच बना हुआ है। उसके मध्य में एक सफेद संगमरमर की विशाल मूर्ति खड़ी है। उस मूर्ति के दोनों हाथ ऐसी मुद्रा में हैं कि उनके बीच अबाबील आराम से छुपकर इस ठंड भरी रात को गुजार सकता है, काट सकता है। वह नीचे उतरा, उसने मूर्ति के एक दो चक्कर काटे। चारों तरफ सन्नाटा था, उसे जगह सुरक्षित लगी। वह मूर्ति के दोनों हथेलियों के बीच दुबक गया। वो बहुत थक चुका था, कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई। अचानक रात के दूसरे प्रहर पानी की कुछ बूंदों से उसकी नींद खुल गई। आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं कोई बादल का टुकड़ा भी नहीं। तारे झुंड के झुंड आसमान के नीले बगीचे में खिले थे। चांद एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर ये पानी की बूंदें आई कहां से? उसने पंख को खोलकर करवट बदली। और दो बूंदे फिर उसके ऊपर गिरी। उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा ये मूर्ति की आंखों से झरते आंसू हैं। उस मूर्ति की खूबसूरत आंखों से आंसू बरस रहे हैं। अबाबील ने मूर्ति से पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो भाई? मूर्ति ने जवाब दिया, मैं हैप्पी प्रिंस हूं। मैं हमेशा खुश रहता था और अपनी जनता को भी हमेशा खुश रखता था, पर जब से मैं इस मूर्ति में तब्दील हो गया हूं, मेरे इस शहर की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अबाबील ने कहा, मैं ठहरा पक्षी, फिर ठंड मेरे पीछे पीछे पाला लेकर दौड़ी चली आ रही है। एक दो दिन में तुम्हें और मुझे यहीं पर बर्फ की समाधि लेना पड़ेगी। नहीं भाई, नहीं, मैं सुबह यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। हैप्पी प्रिंस ने कहा, ठीक है, सुबह चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस एक मेरा छोटा सा काम कर दो प्लीज। अबाबील ने कहा, अच्छा बोलो, क्या करना है मुझे? हैप्पी प्रिंस ने कहा, वो दूर तुम्हें पहाड़ी पर रोशनी दिखाई दे रही है? अबाबील ने आंखें गड़ा कर देखा, बोला, हाँ, वहां दो बच्चों ने दो दिन से खाना नहीं खाया है, मालूम है तुम्हें? उनकी माँ दूर कहीं दो दिन से काम के सिलसिले में गई हुई है। उन दो बच्चों को सेव फल की टोकरी देना है। सुनो, मेरे गले में जो मोतियों की माला है ना, उसे तुम चोंच से निकाल लो और सुबह होते ही उसे बाजार में सुनार को बेच देना। सुनार से पैसे लेकर फल वाले के पास चले जाना। उसे पैसे देकर जितनी टोकरी फल मिले उसे साथ लेकर पहाड़ी पर बनी झोपड़ी में दे आना। फल वाला बूढ़ा मुझे जानता है, वो मेरा काम जरूर कर देगा। अब सुबह अबाबील ने उठकर हैप्पी प्रिंस की मालाएं नोच ली, उसे लेकर सुनार को बेचा, पैसा लेकर फल वाले के पास गया। करीब चार टोकरी पांच टोकरी ताजे फल लेकर वह फल वाले के साथ पहाड़ी पर बनी झोपड़पट्टी में पहुंच गया। रास्ते में फल वाले ने हैप्पी प्रिंस के बारे में जो बतलाया उसे सुनकर अबाबील दंग रह गया। अपने शहर के बाशिंदों की मरने के बाद भी इतनी फिक्र करने वाला इंसान इंसान नहीं, फरिश्ता ही हो सकता है। झोपड़ी वाले बच्चों को दो तीन दिन की फलों की खेप पहुंचाकर शहर में कुछ दाना पानी चुककर अपना अबाबील शाम ढलते हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच गया। दिन भर के थके हारे अबाबील को नींद के झोंके आने लगे। सोने से पहले उसने हैप्पी प्रिंस से कहा, दोस्त, मैं अब तुम्हारा साथ ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, शायद मुझे कल सुबह ही उड़ जाना होगा। तुम्हारे शहर में भी अब शीत लहर चलने लगी। और हैप्पी प्रिंस मुस्कुरा दिया। फिर रात गहरा गई। रात के चौथे पहर फिर हैप्पी प्रिंस के आंसुओं से अबाबील की नींद टूट गई। अबाबील बोला, अब क्या हुआ मेरे दोस्त? हैप्पी प्रिंस ने कहा, वो देखो, ओह ओह, नदी के किनारे वो देखो बस्ती उजाड़ दी गई। वो 200-250 परिवार के पास आज शाम इस ठंड में सोने के लिए जगह नहीं। बस ये मेरा आखिरी काम है दोस्त, इसे करके तुम कल दोपहर तक जरूर निकल जाना मेरे भाई। अबाबील उबासी लेते हुए बोला, मुझे करना क्या होगा? दरअसल अबाबील को भी इन नेक कामों में बड़ा मजा आने लगा था, पर उसने कहा, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है प्रिंस? हैप्पी प्रिंस ने कहा, मेरी दोनों आंखें बहुत कीमती पत्थरों से बनी हुई है, उन्हें तुम निकाल लो अभी रात में ही, कोई देखेगा नहीं। सुबह होते ही सुनार को बेचकर सारे पैसों से उजड़ी बस्ती वालों की मदद करना और उन्हें भी पहाड़ी के पास वाली जमीन पर बसा देना। अबाबील गुस्सा हो गया, नहीं, मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को नहीं निकाल सकता प्रिंस, इनके बिना तुम्हारी जैसी दृष्टि ही खत्म हो जाएगी दोस्त। तुम कितने बुरे दिखोगे हैप्पी प्रिंस। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकूंगा, हैप्पी प्रिंस ने दुखी स्वर में कहा। इस पत्थर की मूर्ति में लगी ये खूबसूरत आंखें किसी जिंदा इंसान के काम आ जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है दोस्त? प्लीज देर न करो, सवेरा होने को है। बोझिल मन से अबाबील ने हैप्पी प्रिंस की आंखें निकालना शुरू कर दी। कुछ ही देर में हैप्पी प्रिंस की आंखों से खून उतर आया और उन खूबसूरत आंखों की जगह गड्ढे पड़ गए। सुबह होते ही अबाबिल ने फल वाले बुड्ढे के साथ काम शुरू किया। वो शाम ढलते ढलते उजड़ी बस्ती वालों को ठेले बैलगाड़ियों से पहाड़ी पर पहुंचा कर बसा दिए। सबने, सारे उजड़े लोगों ने हैप्पी प्रिंस को बहुत याद किया, बहुत मिस किया। पर देर रात बस्ती में चूल्हे जलने लगे। दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद अबाबिल खामोशी से हैप्पी प्रिंस के हाथों की ओट में आकर सो गया। दूसरे प्रहर रात को जोरदार बर्फ का तूफान आया, जो लगातार 4 दिनों तक चलता रहा, तबाही मचाता रहा। नगर को, पूरे शहर को उजाड़ के चला गया। पूरा शहर बर्फ से ढक गया। झाड़ गिर गए। जिस उद्यान में हैप्पी प्रिंस अबाबिल थे वो उजड़ गए। हैप्पी प्रिंस का पुतला क्षत विक्षत हो गया। अबाबिल के प्राण पखेड़ू उड़ चुके। उसका मृत शरीर और हैप्पी प्रिंस का दिल दोनों बर्फ में दबे हुए एक दूसरे के पास पड़े थे। 2 दिन बाद जब धूप निकली, मौसम साफ हुआ, नगर निगम कमिश्नर दौरे पर निकले। अपने सफाई कर्मचारियों के साथ उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिया, ये टूटी मूर्ति हटाओ, किसकी है जिसकी आंखें नहीं खून बह रहा? ये टूटी मूर्तियां, ये गंदी मृत शरीर पक्षी के, ये क्या करते हो तुम लोग यार? ये किस तरह का उद्यान है? यहाँ सफाई करो, इसे खूबसूरत बनाओ। संगमरमर की नहाती हुई अप्सराओं की, रमणियों की मूर्तियां लगाओ, उस पे झरने गिराओ, उस पे पानी की बूंदे गिराओ, इसे खूबसूरत बनाओ। उधर ईश्वर के दरबार में ईश्वर ने इच्छा जाहिर की, दुनिया की सबसे खूबसूरत नायाब चीज देखने की। दौड़े दौड़े दो देवदूत, सोने की थाल में मखमल के कपड़े से ढककर ईश्वर के समक्ष दुनिया के सबसे नायाब खूबसूरत चीजों को लेकर हाजिर हुए। जब सोने की थाल से मखमल के कपड़े को हटाया गया तो जानते हो उसके नीचे क्या निकला? दुनिया की सबसे नायाब चीज जो ईश्वर के लिए थी, अबाबिल का मृत शरीर
और हैप्पी प्रिंस का दिल। है ना ये दुनिया की सबसे नायाब चीज।
arparejo.com की प्रस्तुति।